ऐसा इंसान तो फिर हर वक्त झुका रहना चाहिए, उसको तो हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह नेमतों के जवाल से बचाना, अल्लाह ताला आफियत देना, अल्लाह ताला महफूज रखना। और ज्यादा झुकना चाहिए, वो और ज्यादा अकड़ जाता है, सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत। जो जरूरतमंद है, जो बीमार है वो तो दुआ करे, जिसके पास फकर है वो तो दुआ करे, जिसके पास जॉब नहीं है वो तो दुआ करे, मेरे पास सब कुछ है। अल्लाह अकबर। तो इंसान को इसके बाद जबकि वो देख लेता है कि वो रब ऐसा है जिसको मेरी जरूरत नहीं, मुझे उसकी जरूरत है, जिसकी हुकूमत मेरे दम से नहीं चलती। दुनिया के बादशाहों को तो जरूरत होती है ना राया के हिमायत की, अगर बगावत हो जाए तो वो फिर उनको अपनी कुर्सी जाने का डर होता है। अल्लाह ताला वो बादशाह नहीं है, वो नहीं है जो वोटों से किसी के बना हुआ है कि वोट मिलेंगे तो फिर मैं बादशाह हूं, नहीं। उसको ना हमारे सदका व खैरातों की जरूरत, ना हमारी नमाजों की जरूरत, ना हमारे रोजों की जरूरत, ना हमारी किसी चीज की भी जरूरत नहीं। इसीलिए फिर कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है, अल्लाह ताला को हमारी नमाज की थोड़ी जरूरत है। और नादान, ये नमाज तू अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, उसको क्या फर्क पड़ता तेरी नमाजों से। असल में उसको खुश करने के लिए कि तू खुश हो जा मुझसे, मैं झुक झुक के दिखाऊं, मैं तेरे यहां पैर पढ़ पढ़ के दिखाऊं, तेरे आगे सजदे कर करके दिखाऊं कि तू खुश हो जा मुझसे। जैसे मैंने आपको कई दफा एग्जांपल दी, एग्जांपल देने की तो ये जेब ही नहीं देती, लेकिन जैसे सरस समझाने के लिए, एक छोटा बच्चा है वो लाला के आपको कोई चीज दिखाता है, अपने को खिलौने दिखाता है, अपनी कुछ चीजें शौक कर रहा है, आपके आगे आके दिखा रहा है, आपको थोड़ी उसके खिलौनों की जरूरत है, आपको थोड़ी उसकी चीजों की जरूरत है, आपने तो खुद ही लाके उसको दी हुई है। वो लाला के दिखाते सिर्फ आपको खुश करने के लिए, ये देखो ये भी मेरे पास, ये देखो ये भी मेरे पास, ये हमारे पास जो कुछ है वो उसका ही दिया हुआ। अगर आजा इन आजा के साथ उसके आगे झुक जाते हैं तो ये भी उसकी ही दी हुई तोहफी है, ये जिस्म तो उसका ही दिया हुआ, इसको झुका दोगे वो खुश हो जाए। बस ये हमारी छोटी छोटी हरकतें हैं उसको खुश करने की। तो पागल, तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, उसको नहीं जरूरत तेरी नमाजों की, ये तो तेरी जरूरत है। जब हम कहते हैं ना हमारी जरूरत है, तो बाज़ दफा लोगों को समझ नहीं आती हमारी कैसे जरूरत है, हम तो जोड़ भी नहीं, हमें कौन सा जरूरत है नमाज की, नमाज के बगैर भला हम रह नहीं सकते, बिल्कुल अच्छे भले पूरी दुनिया चल फिर रही है नमाजों के बगैर ही, रोजों के बगैर हम क्या रह नहीं सकते, ये हमारी कैसे जरूरत होगी। जरूरत यह है कि तुम्हारी ये जरूरत है कि वो राजी हो जाए तुमसे, वो खुश हो जाए तुमसे, वो तुम्हारे लिए जो भी उसके एहसानात है उनके शुक्राने के तौर पे, उनके उनकी एहसान मंदी के तौर पे ये तुम करते हो। तो कभी कोई भी नेकी करके या इताअत का काम करके ये ना सोचे मैंने बड़ा एहसान कर दिया, ये तो आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए उसके शुक्रिया के तौर पे अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, ये उसके ऊपर कोई एहसान नहीं। अल्लाह अकबर। तो वो गनी है और हमीद है, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ इसलिए कि देखो ना वो फिर भी खर्च करता रहता है, वो गनी है, वो अपने उसका गिना अपने गिना की वजह से ना बेनियाज है, उसको नहीं किसी की जरूरत नहीं है, वो फिर अपने बंदों पे खर्च करता रहता है, बंदे चाहे जो भी कर रहे हैं, चाहे काफिर भी है उसको भी दिए जा रहे हैं, उसको भी खिला रहा है पिला रहा है, वो अल्लाह ताला वो मानता ही नहीं, कहता कोई खुदा ही नहीं, कह रहा है दुनिया कायनात खुद ही बन गई, एथीस्ट है, कह रहा है खुद ही बन गई, फिर भी वो उसको खिलाता है पिलाता है, वो उसके दिए हुए जिस्म से चलता फिरता है, देखता है, बोलता है, उसी की ये दीवी जुबान है ना, इसी के साथ उसी के खिलाफ बातें करता है, उसी का दिया हुआ ये जहन है ना, उसके इसी जहन के साथ उसके खिलाफ सोचता है और बातें बनाता है, और उसकी औलाद दी भी उस रब की, उसका खाना पीना दिया हुआ उस रब का, फिर भी नाफरमानियां करने के बावजूद भी वो रब कैसा मेहरबान, वो गनी है ना, तो वो दिए जा रहा है दिए जा रहा है। देखिए आज हम तो आज पैदा हुए, कब से ये कायनात चल रही है, कौन इसको चला रहा है, कौन खिला रहा है सबको, पिला रहा है सबको, और सिर्फ इंसानों का छोड़े, ये जितनी मखलूक हमारी सर्विस में लगी हुई है ना, उनको कौन खिलाता पिलाता है? आप मछली लेके खा लेते हैं, उस मछली को आज तक किसने खिलाया पिलाया? आप तो नहीं जाके उसको दाना डालते थे समंदर में, उसको कौन खिला रहा था? ये चरिंद परिंद जो आप खाते हैं, उनको कौन खिला रहा है? ये बकरियां, उनको कौन खिला रहा है? ये जमीन से कौन उगा रहा है? हमने तो नहीं कुछ किया होता, वो रब ही है जो उगाता है हमारे लिए। तो क्या फिर हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम दिन में 5 दफा ही उसके आगे झुक जाएं? बस झुकते तो हर वक्त रहना था, क्योंकि मोहताजी जितनी ज्यादा है झुकना उतना ज्यादा था। हमसे वो 5 दफा दिन में भी झुका नहीं जाता, वो भी भारी लगता है, वो भी मुश्किल लगता है, वो भी मुसीबत लगता है। फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर नमाज का जी टाइम हो गया, लो जी सारा दिन नमाजें ही पढ़ते रहो। ये जी सर्दियों के दिन ना सारा दिन ही बस हम तो नमाजें ही, जैसे कि हम मुसल्ले से चिमट गए। ला हमें तो सारी ना उठाना चाहिए था कभी, हमें अपनी मोहताजी का अंदाजा ही नहीं शायद, इसीलिए हम सर उठाते हैं, इसीलिए हम नाफरमानियां भी करते हैं, और इसीलिए हमें भारी लगता है उसके आगे झुकना। जब हमें पता होता ना कि हमारी डोर उसके हाथ में, जब चाहे खींच ले तो हम कुछ ना कर सकेंगे, हम बेबस हैं, तो फिर झुकना ही झुकना था। वो तो जरा सा भी हमें एक झटका भी देता ना, तो फिर हम तिल मिला उठते, फिर सजदे पे सजदे देना शुरू कर देते। और वो नेमतें दिए जाए तो हम इतने ना शुक्रे हैं कि हमें झुकना फिर भारी लगने लगता है। अल्लाह अकबर। तो वो हमीद है, वो तारीफ के काबिल है कि वो फिर भी अता करता जाता है, फिर भी खिलाता है पिलाता है, फिर भी इंसान नाफरमानियां करता है, तो तब भी वो रात को जब इंसान लेटता है तो नींद को भेज देता है कि मेरे बंदे को सुकून आ जाए, थक गया ना सुबह का। अल्लाह तेरे कभी भी तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम तेरा कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, वाकई तू तारीफ के काबिल कि हमारे जैसों का भी ख्याल कर। अगर वो चाहे, इतना वो कादिर है, वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह औरों को ले आए, तुम्हारी जगह औरों को ले आए और दूसरी मखलूक को ले आए, जदीद नई मखलूक को ले आए। इन यशा युद्धिब्कुम, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और एक नई मखलूक पैदा करते। तुम इताअत नहीं करते, तुम नहीं मानते, तो वो तुम्हें वाइप आउट कर दे, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये उसके लिए मुश्किल नहीं, इसलिए क्योंकि वो कादिर है। क्या अल्लाह ताला ने आद और समूद को वाइप आउट नहीं किया, कौम नूह को वाइप आउट नहीं किया? क्या अल्लाह ताला ने फिरौन को खत्म नहीं कर दिया? कितना ताकतवर था वो, जिसने अपने आप को रब कहा था। तो वो चाहे तो किसी को भी हटा दे और दूसरों को ले आए, और चाहे तो सारी की सारी इंसानियत को खत्म कर दे। एक ही चीख थी ना, एक ही चीख फरिश्ते की, वो सारे ऊंधे मुंह गिर गए, पूरी की पूरी कौम ही खत्म हो गई। एक ही तूफान का था ना, वो अलैह सलाम सबके सब गर्क हो गए। एक ही जलजला आता था ना, सब खत्म हो जाते, एक भी बाकी ना रहता। तो खुद अंदाजा कीजिए उसकी ताकत इतनी है, वो किसी का इसमें मोहताज नहीं है, उसकी ताकत इतनी है कि चाहे तो एक आन में सबको खत्म करते। हम अपने लिए भी सबक लें इसमें, पूरी दुनिया को छोड़ें, एज एन इंडिविजुअल, मैं और आप, हम कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला की इस कायनात में, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर हम उसकी इबादत नहीं भी करते, उसकी फर्मा बरदारी की परवाह नहीं भी करते, उसकी दीन की खिदमत के लिए कोई हाथ नहीं हिलाते, तो ना अल्लाह ताला को हमारी जरूरत है ना उसके दीन को। मैं ना सही, कोई और सही, और ना सही और सही, मेरी जगह कोई और ले लेगा। आपके घर में मसलन मिसाल के तौर पे आपकी कोई मशीन खराब हो गई, कोई वॉशिंग मशीन मसलन आपकी खराब हो गई, आप उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, वो सही नहीं होती ना, तो आप क्या करते हैं, उसको सजा के रख नहीं देते, उसको उठा के गार्बेज करते हैं। इसी तरह इंसान अगर अपना काम ना करे ना, तो उसको फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, उसको कुछ झटके दिए जाएंगे, वो फिर भी सही नहीं होता तो उठा के फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला यही बता रहे हैं यहाँ पे, वो हटा दे तुम्हें और औरों को ले आए, ये उसके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। ये हम हैं जो सोचते ना कि ये मैं काम करती हूं, मैं नहीं करूंगी तो फिर देखती हूं कौन करेगा, ये मेरी खुशफहमी हो सकती है। अल्लाह ताला का काम चलाने में उसको किसी की भी जरूरत नहीं, वो बेनियाज है, उसका काम रुकता नहीं है। बाज़ दफा हम नाराज हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि पता नहीं ये सारे काम रुक जाएंगे, मैं ही करती हूँ, अल्लाह ताला किसी और को ले आ जाएगा जो उससे बेहतर करता होगा। या शायुज़िब को मयू हन्नास व याति भी आखरी, अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ना, लोगों वो चाहे ना तो तुम सारों को ले जाए, औरों को ले आए, तो उसको कमी नहीं है। वो ये नहीं सोचता हो ये फिरौन की कौम जो है ये तो इतनी एडवांस्ड है, ये दुनिया से चले गए तो ऐसे कौन आएंगे, नहीं, वो ये नहीं सोचता कि ये तो इतनी इबादत गुजार, ये इतनी अच्छी इबादत करने वाले, ये चले गए तो क्या होगा, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। तो इसलिए हम इन खुशफहमियों में ना पड़े, ये मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या हम नहीं होंगे या हम सारों को कैसे कोई खत्म कर सकता है, हम इतने सारे हैं। पिछली कौमों के सफाए से आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी मुश्किल नहीं और उसको कोई भी परवाह नहीं, उसके इरादे से चीजें चलती हैं, उसका इरादा होगा तो हम यहां पे रहेंगे, उसका इरादा नहीं तो वो उठा लेगा। इसलिए ना एज उम्मत, ना एज इंसानियत, और ना ही एज एन इंडिविजुअल किसी खुशफहमी में ना रहे, वो चाहे तो ले जाए तुमको और ले आए नई मखलूक। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। अजीज इसलिए कि वो गालिब है ना, अजीज का मतलब होता है गलबे वाला, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए कोई ये मुश्किल इसलिए नहीं, जैसे उसने पैदा किया उसी तरह उठा के ले जाए, उसी तरह मौत दे दे, जैसे लोगों को हर रोज मौत आती है, उसके लिए मुश्किल नहीं, सब के सब को मौत आ जाए, ये उसके लिए मुश्किल नहीं। आप देखते ही हैं ना कितनी कौमें थी जो अब जमीन के नीचे से निकल रहे हैं, उनके खंडर कितने हैं जिनकी इमारतें हमें पता चलती हैं, कहां गए वो लोग। हमने वो टर्की में देखा, ऐसा जबरदस्त उन्होंने जो उनका सुल्तान था उसने महल बनाया था कि वहां पे एक बंदा चल भी नहीं सकता कि पूरे महल का सारा चल के टूर कर ले। वो कहते हैं जो बादशाह था वो घोड़े के ऊपर जाया करता था। नहीं, कहां गए वो सब लोग, कहां गई उनकी एम्पायर्स, कहां गए उनके जो हटो बचो के शोर थे, उनके मुहाफिज, उनके आगे पीछे चलने वाले, वो सब किधर चले गए। तो इससे हमें पता चलता है, हिस्ट्री से सीखे, अल्लाह ताला उन सबको ले गया ना। आज कब्रिस्तान देखें कितने ज्यादा, जितने लोग जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे हैं, वो ले गया ना, तो सबको भी खत्म कर दे, एक हवा चलेगी कयामत से करीब सभी खत्म हो जाएंगे जो नेक लोग होंगे। तो फिर अल्लाह ताला चाहे तो एक हवा ही चला दे, सभी खत्म हो जाए। एक वायरस भेजा, कितनी अमवात हुई। ऐसा कोई वायरस आ जाए तो सब खत्म हो जाए। तो खुद को बड़ी चीज ना समझे, ये इंसान बड़ा बन के यहां पे फिर रहा है जमीन पे अकड़ अकड़ के। फिर फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और ना बोझ उठाएगा बोझ उठाने वाला कोई बोझ किसी दूसरे का, जरा बराबर दूसरे का बोझ कोई नहीं उठा सकेगा। क़यामत के दिन अपनी अपनी गठड़ियां लेके खड़े होंगे। हाय दुनिया में तो फिर भी इंसान किसी को बुला लेता है, आ जाओ मेरा हाथ बटा दो। वो शायद कोई तरस खा के किसी का बोझ उठाने के लिए आ भी जाए, मगर क़यामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन कोई भी किसी के लिए देख के भी उसका बोझ उठाने के लिए नहीं आएगा। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा कि आज मैं किसी को किसी की जरा सी भी मदद कर दूं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। जो किया है उसको खुद ही भरना पड़ेगा, अपना अपना बोझ। इसलिए आज अगर कोई कहता है ना कि मेरी खातिर कर लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या तुम्हें, कोई अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बुलाए, तो ये ही सोचना चाहिए वला ताज़िरु वाज़िरा तुम भी जरा उखरा। क़यामत के दिन तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आज इसके कहने पे कर लूंगी, कल को क्या ये मेरा गुनाह उठाएगा? नहीं। तो फिर मैं क्यों आज अपनी आखरत इसकी खातिर बर्बाद करूं? चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो बच्चे हैं, माँ बाप की तो वैसे ही कोई सुनता नहीं है। यही है दो जिनके पीछे इंसान अपनी आखरत भी खराब कर लेता है, खास तौर पे औलाद के पीछे। बच्चे कहते हैं, बच्चों की जिद नहीं हम पूरी किए बगैर रह सकते। तो दुनिया में शायद वो बच्चे आपके किसी बोझ को उठा ले और आपके काम आ जाए, या दुनिया में शौहर की जरूरत है तो शायद भी इंसान कहता है कि भाई इसको कैसे नाराज करें। अपनी आखरत के मामले में कभी भी ये धोखे में ना रहिएगा कि मैं आज इनकी खातिर कर लूं कल कोई बात नहीं, या वो कहें आपको कि कोई बात नहीं कल हम तुम्हारे लिए कर लेंगे। क़यामत के दिन तो इंसान इन्हीं रिश्तों से भागेगा। यौम यफिरुल मरु मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी, सब क्लोजेस्ट जो आपके रिलेटिव्स हैं ना उनका जिक्र यहाँ पे आ गया। भाई, माँ, बाप, बीवी, बच्चा, बेटा, क्लोजेस्ट जो इंसान के हैं उनका जिक्र करके बता दिया गया कि ये रिश्ते भी भाग रहे होंगे इंसान से। तो फिर इंसान सोचे कि किसके ऊपर और तकिया कर सकता है। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन करीब भी जो बेस्ट फ्रेंड, जो बडीज, जो आपके हमीम, वो कहते गहरे दोस्त को, वो दोस्त भी नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, वो उनको दिखाए जाएंगे, उनको सामने होंगे, वो ऐसे नहीं कि नजर नहीं आ रहे, सामने है कि ये बेचारा कितनी मुसीबत में पड़ा हुआ इस वक्त। तो जब उस दिन हमारे गुनाहों का बोझ किसी ने नहीं उठाना तो हम इनकी खातिर क्यों गुनाह करें, ये सोचते नहीं है। अबू रमसा कहते हैं कि अपने वालिद के साथ में था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपने पूछा मेरे वालिद से कि क्या ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा रब्बे काबा की कसम ये मेरा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वाकई? कहने लगे हाँ ये मेरा ही है। आप सल्लम हंस दिए उनकी इस कसम के ऊपर कि देखो कसम खा रहे हैं। और फिर आपने फरमाया सुन लो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात समझाते थे ना तो देखिए कितने तरीके से, सुन लो ना तो तुम इसके गुनाह पर और ना ये तेरे गुनाह पर पकड़ा जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई थी, وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, अगर पुकारेगा बोझ से लदा हुआ उसके उठाने की तरफ तो उसमें से कोई भी कुछ नहीं उठाएगा, चाहे वो करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो। वो बुला भी रहा है कि मेरी मदद कर दो, ये मेरे प्यारे हैं। खुद सोचे, आज अपने प्यारों को जहन में ला के सोचे, ये होंगे जो मेरे से इस तरह करनी कतराएंगे, ये होंगे जो मुझे नहीं पूछेंगे, ये तो मेरे इतने प्यारे रिश्ते हैं, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا کوئی کسی کا بھی نہیں بوجھ اٹھائے گا؟ ہاں ایک ہے جو کسی دوسرے کا بھی بوجھ اٹھائے گا، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے کسی برائی کو اس دنیا میں رواج دیا، لوگوں نے اس کو دیکھا دیکھی، اس کی یہ پہنتی ہے تو میں بھی پہن لوں، انہوں نے ایسے شادی کی ہے تو میں بھی کروں، انہوں نے یہ غلط کام کیے ہیں، یہ اس طرح ناچتی رہی، میں بھی اس کے ڈانس کے سٹیپس میں بھی کروں گی اس طرح کاپی۔ وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے جو دوسرا بھی اپنے سر پہ لے گا، کسی اور کا وہ اپنے سر پہ لے رہا، کیونکہ اس نے شروع کیا یا اس نے اس کو رواج دیا یا اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا یا اس کا دیکھا دیکھی لوگوں نے کیا۔ چلو اس نے سٹارٹ نہیں کیا تھا، اس نے کسی اور کو دیکھا، اس کو دیکھ کے 10 لوگوں نے آگے کیا، ان 10 کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہے۔ ہاں یہ والا بوجھ کوئی اٹھائے گا؟ اس کے سوا نہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم کس خوش فہمی میں ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ دوست بھی دوستوں کو کہہ دیتے ہیں، اور نہیں کوئی نہیں ہمارے کہنے پہ کر لے، آج کچھ نہیں ہوتا، میں تیری وہاں پہ جواب دے دوں گی، میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گی، یہ کوئی یہ جو آپ کو یہ دلاسے دیتے ہیں نا، میں کہہ دوں گی، یہ جھوٹے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دن کتنا بڑا ہے اور کتنا خوفناک ہے۔ اس دن تو انسان اپنے بوجھوں سے پریشان ہوگا، دوسرے کا بوجھ کون اٹھائے گا، دوسرے کی کون فکر کرے گا، کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے اس دن۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں، کن لوگوں کو؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پہ، جن کے اندر خوف خدا ہے نا، آپ انہی کو اے نبی صرف انذار کر سکتے ہیں، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے نا، وہی انسان صرف نصیحت کو پکڑتا ہے۔ جس کے اندر خشیت کیا ہے، خشیت ہوتی ہے کسی کا خوف، کسی کا ڈر اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا ڈر ہونا دل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نصیحت پکڑے گا نا، ہر کوئی نصیحت بھی نہیں پکڑتا، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو بات کہی جاتی ہے، کتنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں بات کو سنتے۔ بات کو سنتا کون ہے؟ وہی بات کو سنتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جس کے اندر غیب میں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ غیب میں ڈرنا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر خوف ہے، ڈر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ وقام الصلاح، اور جو قائم کرتا ہے نماز کو، اور انما نا کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جو نصیحت پکڑ۔ انذار کیا ہوتا ہے؟ انذار ہوتا ہے وارن کرنا، آپ وارننگ دیتے رہے، آپ جہنم سے ڈرائیں، آپ عذاب کا خوف دلائیں، آپ آخرت کے حساب کتاب کی بات کریں، کوئی خوف نہیں، وہ نصیحت پکڑتے ہی نہیں، عمل میں کوئی فرق آتا ہی نہیں، ٹس سے مس ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے، خشیت نہیں ہے ان کے اندر۔ آپ دیکھیں گے آج کے سبق میں خوف خدا کے اوپر بڑی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے نا، کہ اس کی بڑائی کیسی ہے، وہ کتنا بڑا، وہ کتنا عظیم، جب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، تو وہ ایک خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اس رب کو ناراض کرنا، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی بڑائی، وہ رب، میں کیا چیز اور وہ میرا رب، اس کو میں کیسے ناراض کر دوں؟ یہ ہے خشیہ، اس کے آگے کھڑے ہونا ہے مجھے، اس کی نافرمانی کروں، یہ ہوتی ہے پھر خشیت۔ تو پھر نصیحت بھی وہی پکڑتا ہے نا، پھر بات بتائی جائے تو پھر وہی ڈرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے تو صحابہ کیوں کانپ اٹھتے تھے، صحابہ کیوں روتے تھے؟ ان کے اندر خوف خدا تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس تھا، बाकी लोगों को आज वही बातें हमें बताई जाए, हमें कोई असर नहीं होता। खशियत नहीं ना। अकामुस्सला, और जिन्होंने कायम की नमाज, नमाज को कायम करना क्या है, यानी ये नमाज को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके वक्त पे पढ़ना है, उसके अरकान की भी सारे सही होने चाहिए, उनकी भी सही अदायगी करना है, खुशू भी होना चाहिए, इखलास भी हो, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, इसमें हर वो चीज आ जाती है जिससे नमाज मुकम्मल होती है, इसकी सारी शराइत भी पूरी हो, वुजू भी सही हो, लिबास भी साते रहो, किबले की डायरेक्शन भी हो, नमाज का वक्त भी सही हो। तो ये दो चीजें जिसके अंदर होंगी वो ही किसी से नसीहत पाएगा, यानी नमाज और अल्लाह की खशियत। देखिए जब खशियत आती है ना तभी इंसान नमाज के लिए भी खड़ा होता, वरना तो नमाज की भी फिक्र नहीं होती। और ये खशियत है ना, जो ये खौफ है ना, वो इंसान से वो चीजें करा लेता है जो किसी और जज्बे से नहीं होती, यानी किसी की मोहब्बत में इंसान करता है लेकिन उतना नहीं करता, उतनी जल्दी नहीं करेगा जितनी खौफ की वजह से करता है। मिसाल के तौर पर अगर खौफ आ जाए ना कि अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे कि यहाँ पे कोई सांप आने वाला है, मसलन कहते हैं कि यहाँ पे सांप है इस कमरे में, तो एक सेकंड से पहले हम उठ के भागेंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। यहाँ जब पता चलता है कि आग लग गई या भागो, तो लोग अपने बच्चे भी भूल जाते हैं अंदर कि आग लग गई, अपनी जान बचाओ। जलजला जब आता है तो आपको पता है लोग कैसे भागते हैं घर से बाहर के घर ऊपर ना गिर जाए। औलाद का ख्याल बाद में आता है जब जलजला रुकता है ना कि ओहो बच्चा तो अंदर ही रह गया। तो ये जो खौफ होता है ना कोई इंसान से बड़ा कुछ करा लेता है। तो बहुत सारे काम इंसान इस खौफ की वजह से ही कर जाता है, लेकिन लोग आज डरना नहीं चाहते, कहते नहीं खौफ की बात ना करो। खौफ से ही तो इंसान सीधा होता है, अगर किसी चीज का खौफ ही नहीं होगा वो अच्छा मर्जी होगी तो करेंगे, मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। आपसे कहा जाए कि बाहर आ जाए, वहां पे इतने पैसे मिल रहे हैं, कहते हैं अच्छा चलो जी आराम आराम से जाएंगे। आपसे कह दिया जाएगा बाहर आ जाए या घर की छत गिरने लगी है तो फिर देखेंगे कितनी तेज भागेंगे, चीखते हुए भागेंगे, फिर जूता भी नहीं पहनेंगे। तो देखें कोई चीज की मोहब्बत भी इंसान को भगाती है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे खौफ। लिहाजा खौफ खुदा जरूरी है, और यही कुरान हमें याद दिलाता है, बार बार इसकी बात की जाती है। ये जो हमें अब डराया जा रहा है कि देखो उस दिन कोई किसी को काम नहीं आएगा, इकरमा ये फरमाते पड़ोसी भी पड़ोसी के पीछे पड़ जाएगा, अल्लाह से कहेगा इससे पूछ तो सही इसने अपना दरवाजा मेरे ऊपर क्यों बंद किया था। काफिर मोमिन के पीछे पड़ जाएगा, और जो एहसान उसने दुनिया में किए होंगे वो याद दिलाएगा और कहेगा मैं देख आज मैं तेरा मोहताज हूं। बाप बेटे को अपने एहसान याद दिलाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि मैं यहां से अपने लिए कोई नेकी इससे ले लूं, मैं कुछ ना कुछ इसकी नेकी में से अपने लिए कर लूं। इसीलिए तो किसी ने किसी का हक नहीं दिया होगा तो वो क्यों खड़ा हो जाएगा, वो तर्स नहीं खाएगा कि हाय बेचारा इसको भी तो आज जरूरत है, चलो जाने देता हूं। नहीं, वो कहेगा नहीं जो भी ले सकूं आज ले लूं, इसने मेरा ये हक मारा, इसने मुझे ये हक नहीं दिया। ये हम तो यहाँ पे लूटते खसूटते में लग जाते हैं कि बस हकूक मिल जाए हमें। अगर यहाँ पे हक नहीं भी मिला तो कयामत के दिन मिल जाना, वहां पे तो एक बेसिंग बकरी को भी हक दिला दिया जाएगा, तो हमारे हक लेके कोई भाग नहीं जाएगा। ऐसी अंधेर नगरी नहीं है, दुनिया में लगता है ऐसे, लेकिन आखिरत में वो हक मिल जाएंगे। तो कोई नहीं आपका हक लेके भाग सकता। हमें ये फिक्र ज्यादा होती है किस किस ने हमारा हक नहीं दिया, हमने किसका नहीं दिया इसकी नहीं हमें फिक्र। तो वहां पर तो लोग अपने हक लेने के लिए कैसे जमा हो जाएंगे।